चंद्रमा की जू तो परमात्मा है और शुद्ध हृदय की उपमा दर्पण के साथ दी गई है। तो आकाश की जू परमात्मा और दर्पण की जू शुद्ध हृदय और प्रतिबिंब की जू वो समभाव, भाव जो जड़ है, अंतकरण जड़ है, तो अंतकरण का भाव भी इस जड़ है, इस समभाव में उसका परमात्मा का आभास मात्र है। तो परमात्मा का स्वरूप भी सम है, तो इसलिए यह बात बतलाई गई, जिसके हृदय में समता है, जिसका मन समता में स्थित है, जिनकी बुद्धि सम है, वो परमात्मा को प्राप्त हो चुका, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब में हमारा समभाव होना चाहिए, मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल के बीच के में जो गुणातीत महात्मा जो पुरुष होते हैं, उन दोनों में समभाव रहता है, समभाव हो जाता है, सम दुख है सुख है स्वस्थ हो, समलोष्टा सम कांचनम, तुल प्रिया प्रियो धीरस, तुल निंदा तुसंग स्तुति, मान अपमान योस्तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। स गुणातीत उच्यते, वह गुणातीत कहलाता है। कौन? सुख और दुख में जो सम है, संसार के में ख्याल करके देखो, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, तो समता कहां? सम दुख है सुख है स्वस्थ है, स्व जो है परमात्मा अपना असली स्वरूप, उसमें जो स्थित है वह तो पुरुष सुख दुख में सम है। समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी और पत्थर और सुवर्ण, इन में जिनकी सम बुद्धि है, सम भाव है, प्रिय अप्रिय अनुकूल प्रतिकूल, इन दोनों में जो सम है, और धीर यानी ज्ञानी, और अपनी कोई दूसरा स्तुति करता है या निंदा करता है, उस निंदा और स्तुति के वहां जो सम है, और मान और अपमान में जो सम है, बैरी और मित्र की पक्ष में जो सम है, और कर्मों के वहां कर्तापने का अभाव है, माने कर्तापने के अभाव से रहित है, वे सारे आर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहलाता है। गुणातीत से उच्च, गुणातीत माने जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा पुरुष, ये लक्षण है। तो सबके वहां प्रधान बात क्या है कि सम। तो मन के जो प्रतिकूल भाव है उसमें भी प्रतिकूलता को उठाना है, सब में एक भाव करना है, तो किसमें समावेश करना चाहिए? अनुकूलता। कि जो भी कुछ चेष्टा होती है भगवान की इच्छा के अनुसार होती है, हमारे तो मन के प्रतिकूल है किंतु भगवान के तो मन के अनुकूल है, तो अपने को तो भगवान की अनुकूलता में अनुकूलता का समावेश करना है। भगवान के जो अनुकूल वही हमारे अनुकूल, भगवान का जो सिद्धांत हुई अपना सिद्धांत, तो जो भी कुछ होता है वो भगवान का विधान है, वो न्यायुक्त है और मंगलमय है, इसलिए उसको भगवान की लीला समझना चाहिए। लीला का तत्व रहस्य समझने के बाद में फिर सब जगह अपने आप ही एकता हो जाती, उसमें दो भेद नहीं होते लीला के वहां, ये तो अनुकूल ये प्रतिकूल, दो भेद हो तो लीला नहीं। ये समझ लिया जाए कि जो भी कुछ हो रहा भगवान की लीला हो रही है, तो प्रतिकूलता को वहां गुंजाश नहीं। प्रतिकूलता को जब गुंजाश नहीं है तो फिर ये जो जितने राशि तामसी विकार हैं सब नष्ट हो जाते। प्रतिकूलता में भय होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है, प्रतिकूलता में बैर होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, प्रतिकूलता में चिंता होती है, प्रतिकूलता में ईर्ष्या होती है, ये सब प्रतिकूलता में होते हैं, सब स्वाहा। तो भगवान कहते हैं हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय हो। हर्ष माने हर्ष ईर्षा भय उद्वेग से जो सर्वथा रहित है वह मेरा भक्त मुझको प्यारा है। भगवान निर्विकार और उसका भक्त निर्विकार, परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तब सब में समता हो जाती। यह जो द्वाल है इसके लिए सब सम है, जड़ है ना, यहां चाहे आप डालियां दो चाहे किसी की प्रशंसा करो, चाहे द्वाल को ही गालियां दो द्वाल की प्रशंसा करो, या एक प्रकार से चुप है, दोनों में सम है। चाहे द्वाल जो है अपमान करो चाहे इसका अपमान करो, तो दोनों समान है, द्वाल की माफक बन जाना। द्वाल तो जड़ है, हृदय सो जड़ है, उस हृदय के साथ जिसके वहां जीवात्मा की एकता होकर के और एक प्रकार से उसका मालिक बन बैठता है, तब तो सारे विकार पैदा होते हैं। जब ये जीवात्मा इससे हटकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और केवल ये जब हृदय ही रह जाता है तो इसमें फिर कोई प्रकार का विकार नहीं होता, दोनों एक होने से विकार होता। जड़ और चेतन की जहां एकता है वहीं सब विकार पैदा होते, न केवल जड़ में विकार हो सकता है न केवल चेतन में, चेतन तो निर्विकार शुद्ध है ही, जड़ में विकार होता है वो चेतन के संग से होता है, वो विकार जड़ में ही चेतन मान लेता अपन, इस वास्ते वो जन्मता मरता रहता है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं संयोगो हे हेतु, हे माने त्यागने के योग, जो दुख है उसका नाम हे, उस दुख का हेतु संयोग है, जड़ चेतन का संयोग या को प्रकृति पुरुष का संयोग या आत्मा और बुद्धि का संयोग, एक ही बात है। बुद्धि कह दो प्रकृति कह दो जड़ कह दो, एक ही बात, केवल जड़ पदार्थ में दुख नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जितने जड़ पदार्थ है दृश्य पदार्थ है के साथ में चेतन का संबंध नहीं है, ये पत्थर है द्वाल है घड़ी है बाजा है, इसको चाहे तोड़ डालो किसको दुख होगा, तो दुख को होगा जो इसको अपना मानता है, यानी ये बाजा मेरा, ये घड़ी मेरी, उसको दुख होता है। घड़ी को बाजे को नहीं होता, क्यों? घड़ी और बाजा तो जड़ है, और इस पर अधिकार जमाने वाला जो चेतन है, जड़ मिश्रित चेतन, बुद्धि से मिला हुआ चेतन, उसको दुख होता है। घड़ी को बाजे को तो होता नहीं। इसी प्रकार से इस शरीर के भीतर में जो अंतःकरण है बुद्धि, और उसके मां जो एक दृष्टि चेतन अपना घर जमा करके बैठे है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो सुखी दुखी होता है। इस जड़ के संयोग से, जड़ को आत्मा मानने से ऐसा एक क्यों हो रहा है? अविद्या से, अज्ञान से, तस्य हेतु अविद्या, इस संयोग का जो हेतु अविद्या है, जड़ और चेतन, ये दोनों चीज परस्पर में एक दूसरे से भिन्न है, उस दोनों की जो एकता ज्ञान के कारण से मान रखी है, इस कारण से सुख दुख होता है। इसमें हेतु केवल अज्ञान है, जो कहते अविद्या। अविद्या का मतलब है कि अनात्म जो देह आदि, उसमें जो आत्म बुद्धि है, इसका नाम अविद्या। शरीर आदि जो विनाशशील वस्तु है, इसको सत्य मानना, नित्य मानना, इसका नाम अविद्या। और ये शरीर दुख का घर है, और संसार के विषय भोग सब दुख के घरों से दुख रूपी है। जिनको आप सुख समझते हो, वो तो परिणाम में दुख के देने वाले होने से, और उसके संस्कार भी दुख देने वाले होने से, सब दुख ही है। उस दुख में ही सुख बुद्धि है, ये अविद्या है। और शरीर जो महान अपवित्र है, उसको मैं शरीर हूं ऐसा मान करके, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, ये भी अविद्या ही। विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। ये संयोग जो है, उसमें हेतु अविद्या ज्ञान है। नहीं, आत्मा चेतन शरीर जड़, इसका मेल कैसे हो सके? इस अज्ञान को दूर करने के वास्ते सबसे बढ़कर है ज्ञान, और उस ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्पुरुषों के संग से, यानी ज्ञानियों के संग से ज्ञान मिलता है। और हम लोग अधिक संग अज्ञानियों का करते हैं, तो अज्ञानियों के संग से ज्ञान दूर नहीं होता। दूसरा उपाय है महापुरुषों के जो वचन है, पत्र है, लेख है, उपदेश है, या पुस्तकें हैं, महापुरुषों का भी, महापुरुष जो भगवान श्री कृष्ण जी, उनका जो वचन है, उपदेश, वो तो साक्षात महान अमृत है, जैसे गीता। और जितने जो शास्त्र है, ये ऋषियों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, उनका सुन, माने उनमें प्रीति, उनका श्रवण कर करके उनको धारण करना, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी शास्त्र के अनुशीलन से ज्ञान होता है, और सत्पुरुषों के संग से ज्ञान होता है, और निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जावे, तो फिर उसमें ज्ञान आप पैदा हो जाता है। परलोक, ईश्वर, महात्मा, शास्त्र, इनके में विश्वास कर लिया जावे, उसका नाम श्रद्धा, तो श्रद्धा से भी ज्ञान पैदा हो जाता है। और ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान के जो बहुत से साधन बतलाए हैं, उनका सेवन करने से भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के बहुत से उपाय, उनमें कोई भी एक उपाय कर लेने से ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने से ज्ञान का नाश हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञान के उदय होने से ज्ञान का नाश हो जाता है। गीता में सभी बात बताई, भक्ति करने से भगवान उसको ज्ञान देते हैं, ये तो भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में बताया है। और महात्मा पुरुषों की शरण जाने से ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने गीता की 4वें अध्याय के 34 के श्लोक में और 13वें अध्याय के 25 के श्लोक में बताया है। और निष्काम भाव से कर्म करने से अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने 4वें अध्याय के 38 के श्लोक में बताया है। और ईश्वर, परलोक और महात्मा और शास्त्र, इनके मां श्रद्धा करने से ज्ञान हो जाता है, ये 4वें अध्याय के 39 के श्लोक में बताया है। और ज्ञान के साधन से ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के मां 50 के श्लोक से लेकर के 55 के श्लोक के साधुओं के द्वारा बताया। और साधुओं का नाम ही ज्ञान है, ये गीता की 13वें अध्याय के मां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक बताया। तो गीता तो एक प्रकार से ज्ञान से ओतप्रोत हो रही है, भरी हुई है, उसका संपादन करने से ही मनुष्य को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मनुष्य में राग द्वेष की मात्रा जितनी अधिक है, उतना ही वो परमात्मा से दूर है। और राग द्वेष की जितनी मात्रा अधिक है, उतनी उसमें विषमता है। जितने अंतकरण में समता आ जाती है, राग द्वेष की मात्रा घटती घटती एकदम घट जाती है। समता ही परमात्मा को स्वरूप है, यानी स्वरूप की प्राप्ति में हेतु होने से स्वरूप ही कहे जावे, कोई हेतु नहीं। समता एक कसौटी है साधक की और सिद्ध की, दोनों की। जब समता नहीं है तो वो साधक साधक नहीं है, सिद्ध सिद्ध नहीं। तो समता को यहां तक पहुंचा देना है, सम संभाव। यह विषमता है सो अज्ञान से है। एक भाई ने मेरी प्रशंसा कर दी और एक ने मेरी निंदा कर दी। एक ने कह दिया कि जयदियाल बड़ा अच्छा है, महात्मा है, ज्ञानी है, योगी है। दूसरे ने कह दिया कि नहीं, ये तो दम्भी है, पाखंडी है, बदमाश है, चोर है। दोनों के जो शब्द हैं, वो वस्तु से क्या चीज, आकाश का गुण है। आकाश का गुण शब्द है, उससे आत्मा से उसका क्या संबंध। और वे जो निंदा करते किसकी, बोले जयदियाल की। तो जयदियाल कौन, शरीर के बीच में जो आत्मा है उसका नाम तो जय दिया है नहीं। आत्मा तो नित्य है और सत्य है, जब ये शरीर गर्भ के मां था तब आत्मा तो मौजूद थी ही, किंतु जयदयाल नाम उस वक्त नहीं था। तो जयदयाल नाम तो एक औपचारिक है, कल्पया हुआ है, मिथ्या है। आत्मा जयदयाल कैसे हो सके? जब ये पैदा हुआ तो घरवालों ने कहा कि गीगला जाया, उस वक्त में जयदयाल नहीं था। किसने कहा लड़का पैदा। थोड़ा दिन के बाद परामर्श हुई घर के मां इसका क्या नाम निकालना चाहिए लड़के का। कोई कहता है कि राम सिंह निकाल लो, कोई कहता है कृष्ण दत्त निकाल दो, कोई कहता है रामदत्त। ये होते होते किसी ने कह दिया जयदयाल निकाल लो, तो जयदयाल कायम कर दिया। बहुत दिन तक तो मुझको ये मालूम ही नहीं रहा कि जयदयाल जयदयाल क्या बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद एक प्रकार से मैं समझ आ गया कि मुझको जयदयाल कहते। उनका थरका हुआ जो जयदयाल ना उसको मैं अपना नाम मानने लगा। उसके बाद में कोई जयदयाल की निंदा करता है तो मैं समझने लगा मेरी निंदा ये लोग कर रहे हैं, स्तुति कोई करते तो मैं समझ लगा ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो वास्तु के बीच में जयदयाल की निंदा जयदयाल की स्तुति से मैं तो आत्मा हूं, मेरे से उसका क्या प्रयोजन। इसका नाम है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है तो चाहे कोई निंदा करो चाहे कोई स्तुति। इसी प्रकार से मान अपमान के मां है। मान होता शरीर का और अपमान होता शरीर का। तो शरीर तो जयदयाल है नहीं, मैं तो कोई शरीर नहीं हूं, ये तो नाशवान है, घटता बढ़ता रहता है, एक दम विनाश होने वाला है। तो ऐसे एक बुत को, एक मांस के पिंड को मैं अपनी आत्मा मानू कि ये मैं हूं, ये तो मूर्खता है। इसके मरने से अपना मरना, इसके कायम से अपना कायम रहना मानू है, तो एक प्रकार से ये तो जन्मने मरने वाली चीज है। ये अपनी दृढ़ जो मानता है उसी के कारण से अपना जन्म और मरण होता रहता है। ख्याल करके देखो कि शरीर आत्मा कैसे है। किसी कारण से हमारा हाथ कट जावे तो कटे हुए हाथ के बीच में फिर हमको अपनी आत्मा प्रतीत नहीं होती, चाहे उसको जलाओ चाहे गाड़ो, दर्द भी नहीं होता। क्यों? कि मैं उसमें अपनी आत्मा नहीं मानता। और जहां अपनी आत्मा में मानता हूं वहां दुख होता है। तो ये मानी हुई है बात। वास्तु के मां हुए तो हाथ कटने के बाद में भी उसमें हमारी आत्मा प्रतीत होनी थी। तो बात तो सच्ची है नहीं, मानी हुई है। तो जब ऐसी बात है शरीर में किसी प्रकार से हुई नहीं, तो फिर एक प्रकार से कोई शरीर का चाहे मान करो चाहे अपमान करो, कटे हुए जो हाथ है उसको कोई जलाओ चाहे काटो, तो जैसा वो हाथ है वो एक नमूना है, ऐसा ही दूसरा हाथ है, ऐसे हमारे दूसरे पैर है। ये बात जब समझ में आ जाए उसका नाम ज्ञान है, तो फिर मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं, रत्ती भरी भी उसमें फर्क नहीं रहता। हम देखते हैं कोई एक दीवार को गाड़ काटता है, एक दीवार को कोई प्रशंसा करता है, तो क्या उसका कोई हमारे ऊपर असर आता है? रस्ते में चलते हैं, समझो कि बहुत से पदार्थ मिलते हैं, कोई किसी प्रशंसा कोई किसी निंदा करता रहता, कौन ध्यान देता है? अपना कोई संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार से थी जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब पदार्थ सब समान हो जाते हैं, क्रिया सब समान।